मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, मुख्य विषय के रूप में आज मेरे पास कुछ खबरें हैं, लेकिन मैं कुछ पहले दूसरी बातें आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो यह कि कल मैंने आप सबके लिए मुख्य विषय के तहत जिस विषय पर बात की थी, मुझे इस बात का बहुत आत्मसंतोष है कि उस विषय को आपने सर माथे पर लिया और जो मुझे मेल मिले हैं उससे मैं इस बात का अनुभव कर सकता हूं कि आपको खासकर भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए काफ़ी उससे दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। और आप में से बहुत लोग जो निराशा के अंधकारों में अपने आप को घिरा हुआ पा रहे थे, कहीं न कहीं उन्हें अब रोशनी की किरण दिखाई दे रही है। दोस्तों, थोड़ी सी बात जो मैं आज आपसे करना चाह रहा हूं वो ये कि जितने मेल मुझे मिल रहे हैं, उन मेल्स में जो हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं, हमारे ऑफलाइन क्लासेस के भी स्टूडेंट हैं, उनमें से कुछ का सिलेक्शन हुआ है, बहुतों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है। दोनों तरह के मेल मुझे प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं, जो डेली ऑडियो लेक्चर्स सुन रहे हैं वो स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ जो कहीं भी किसी भी रूप में सिविल सर्विस देने वाले स्टूडेंट हैं, उनकी सफलता के लिए बहुत ही भरे पूरे मन से मैं उन्हें अपनी बधाई देता हूँ, अकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से और मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से भी। और साथ ही साथ वो अपनी सफलता की मंजिल तक पहुँचे इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ भी देता हूं। अब आप देखिए मित्रों कि वही ऑनलाइन क्लासेस हैं, वही ऑफलाइन क्लासेस हैं, वही डेली ऑडियो लेक्चर हैं, वही किताबें हैं, वही सिलेबस है, अलग अलग जगहों से आप सब तैयारियां कर रहे हैं और इन्हीं में से कुछ सफल हो रहे हैं और ज्यादातर सफल नहीं हो रहे हैं। चलिए हम अभी पेपर की बात को किनारे कर देते हैं कि पेपर कैसा आया, लेकिन सफल तो कुछ लोग हो ही रहे। कल भी इसके बारे में मैंने बातें की। एक महत्वपूर्ण बात जिसकी ओर मैं आप सबका ध्यान आज दिलाना चाहूंगा वो ये, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक मेल की चर्चा की थी, डिटेल में मैंने पढ़ करके आपको सुनाया था कि एक स्टूडेंट ने वो 25 टॉपिक्स निकाले थे जिनकी चर्चा हम लोगों ने डेली ऑडियो लेक्चर में की थी और जिसमें से 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन साथ ही साथ मुझे एक और भी मेल मिला था जिनमें उन्होंने शिकायत की थी कि डेली ऑडियो लेक्चर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया। अब आप इन दोनों स्टूडेंट्स को आमने सामने रखकर इनका मूल्यांकन कर लीजिए। एक को डेली ऑडियो लेक्चर से 27 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और दूसरे को डेली ऑडियो लेक्चर से केवल एक ही क्वेश्चन मिल रहा है। तो क्या दोनों के परीक्षा परिणाम अलग अलग नहीं होने चाहिए? हालांकि दोनों तैयारी कर रहे हैं, दोनों हमारे ही स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आपके तैयारी करने का तरीका क्या है। केवल तैयारी करने से ही बात नहीं बनेगी। हाँ, तरीका क्या होगा, कैसे तैयारी करेंगे और क्या इसके लिए मार्गदर्शन दिए जा सकते हैं, डेफिनेटली उस पर लगातार मैं आप सबके साथ अपने विचार, अपना मार्गदर्शन शेयर करता रहूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप असफल नहीं हुए हैं तो उसका कारण फिलहाल खुद में ढूंढें, कहीं बाहर नहीं, क्योंकि बाहर अगर आप ढूंढेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। खुद में ढूंढेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब कुछ जो दूसरी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। और आज जो खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इनफैक्ट इन खबरों को कल रखा जाना चाहिए था, तो दो दिनों के खबरों को मिला करके मैं आपके सामने कुछ बातें पेश कर रहा हूं। अखबारों में आपने कल पढ़ा था कि अफगानिस्तान में भूकंप आया और बहुत जबरदस्त भूकंप आया है, 6.1 रिचर स्केल पर। लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए हैं। एक छोटी सी खबर है, देखिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक प्रश्न इस तरह से पूछा गया था, चार देशों के नाम थे और उनके आगे लिखा गया था कि ये चार जो देश हैं ये किस क्यों चर्चा में आए। आपको ध्यान आ रहा है, जैसे चाड, गिनी, लेबनान और ट्यूनेशिया, और उनके आगे दिया हुआ था कि ये महत्वपूर्ण क्यों रहे, मतलब चर्चा में क्यों आए। तो इस रूप में एक फिर हमें खबर मिल रही है कि अफगानिस्तान में बहुत जबरदस्त भूकंप आया, इसकी वजह से अफगानिस्तान चर्चा में रहा। इसका जो पक्तिका प्रांत है वहां यह भूकंप आया है। जब वो खबर हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी में हिंदुकुश पर्वत की भी चर्चा थी। बस आप इतना जान लीजिए कि जो हिंदुकुश पर्वत है वो बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा तैयार करता है, ये खबर में ही बात थी। तो अब जो थोड़ी सी आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना होगा वो ये कि खबर भले ही अब यहां जो खबर है वो अफगानिस्तान में भूकंप की है, लेकिन जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सतर्कता के साथ पढ़ रहे हैं। बस केवल इतना परिवर्तन तो आपको जरूर करना पड़ेगा। अगर आपने कल का रेडियो न्यूज सुना हो तो उस रेडियो न्यूज में मार्गरेट ई कजिन्स के बारे में कुछ बताया गया था। इनफैक्ट वो एक क्विज करा रहे हैं फ्रीडम के, हमारे जो 75 ईयर्स पूरे हुए उसके संदर्भ में, और उसके बारे में फिर रेडियो न्यूज में विस्तार से बताया गया था। अभी मैंने नाम लिया मार्गरेट ई कजिन्स। जब आप फ्रीडम मूवमेंट पर किताबें पढ़ेंगे तो शायद इनका नाम आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, और अगर पढ़ने को मिल भी गया तो सामान्य तौर पर हम पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, सभी नामों को तो हम याद नहीं कर सकते। लेकिन अब आप देखें कि वो रेडियो न्यूज में शामिल हो चुकी है, ये नाम रेडियो न्यूज में शामिल हो चुका है, इसका मतलब है कि इस पर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान दे देना चाहिए। तो ये मार्गरेट ई कजिन्स क्या है, कौन है? रेडियो न्यूज के अनुसार हम फिर अपने को वहीं तक सीमित रखेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखे कि बहुत सारे जो क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं वो बिल्कुल ज्यों के त्यों गूगल से लिए गए हैं। आप विकिपीडिया पर उस टॉपिक को खोलिए, उसके फ्रंट पेज पर ही जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती हैं उन्हीं इन्फॉर्मेशन को बेस बना करके क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। डिटेल में जाने की भी कोशिश नहीं की गई है, मेहनत नहीं की गई है कि थोड़ा सा और कुछ इसके बारे में पूछ लें, नहीं, बस फ्रंट पेज पर जो मिल गया उसी से क्वेश्चन तैयार कर लिए गए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मार्गरेट ई कजिन्स के बारे में रेडियो न्यूज में जो कुछ भी बातें बताई गई हैं उसी के आधार पर तैयार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मार्गरेट ई कजिन्स हैं, ये विदेशी नाम से ही पता लग रहा है आपको कि थे समाज सेवी रही हैं, स्वदेशी और खादी के प्रचार में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई बार इनको गिरफ्तार किया गया और खासकर राजमुंदरी और बेल्लोर में इन्हें गिरफ्तार किया गया था 1930 के आसपास। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो एनी बेसेंट हैं उनके साथ होम रूल आंदोलन में भाग लिया था, या यूं कह लीजिए कि उसमें अपनी भागीदारी निभाई थी। तो बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैं बार बार आप सबसे कहता आ रहा हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, बस उसके प्रति थोड़े से सतर्कता का भाव रखें तो ये सारी चीज़ें फिर हमारे दिमाग में आती चली जाएंगी, और यूं कह लीजिए कि ये जो प्री एग्जामिनेशन की जो वैतरणी होती है ये हमें पार करा देंगी। दोस्तों, G7 के शिखर सम्मेलन के बारे में हम लोगों ने बातें की थी, और ये जो होना है शिखर सम्मेलन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें भाग लेने के लिए जाएंगे। ये जर्मनी की एक जगह है एल्माउस, एक और भी सामने का शब्द है, मैं जानबूझ करके नहीं बोल रहा हूँ, उच्चारण में जरा सा गड़बड़ी हो जाती है चूंकि अभी थोड़े से दांतों में प्रॉब्लम भी है, बस आप एल्माउ नाम याद रख ले। 26 से 27 जून के बीच में G7 देशों का शिखर सम्मेलन होना है। ये संगठन कितना महत्वपूर्ण है आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका, कैनेडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश इसके सदस्य हैं। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो संगठन है ये अपने आप में कितना इम्पॉर्टेंट होगा। रेडियो न्यूज में आपने एक शब्द सुना होगा, सूर्य नूतन। सूर्य से आप अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि इसका कोई ना कोई संबंध निश्चित रूप से सोलर एनर्जी से होगा। अगर आपको ऑप्शन दिए जाए तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये सोलर एनर्जी से किस तरीके का संबंध है इसे बस थोड़ा सा जान लीजिए तो सूर्य न्यूतन आपके समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमारे यहाँ जो सोलर कुकिंग होते हैं सिस्टम, ये एक प्रकार से इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है। घर के अंदर एक जो हमारे कुकर्स होते हैं तो कैसे सोलर एनर्जी के द्वारा उसे खाना पकाया जा सकता है, तो बकायदे सूरज की रोशनी को लिया जाता है और उसको फिर हीट में तब्दील कर दिया जाता है और उस हीट से फिर भोजन पच जाता है। इस सिस्टम को कहा गया सूर्य नूतन, और इसे जो डेवलप किया है, क्योंकि अब सिविल सर्विस इस तरह के क्वेश्चन भी पूछने लगा है, डेवलप किया है इंडियन ऑयल ने, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, जो तेल की हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, उसने यह सिस्टम इजाद किया है सूर्य नूतन। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। कल मैंने आपको दो बहुत इम्पॉर्टेंट लेख प्रोवाइड किए थे और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने जरूर उसके साथ न्याय किया होगा। उसमें एक लेख था उत्तर और भारत को लेकर के, जो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा था। उसमें यह बताया था कि किस तरह से उत्तर की संस्कृति या उत्तर की जो राजनीतिक चेतना है और दक्षिण की जो राजनीतिक चेतना है वो अलग अलग है, और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा लेख है, उसे आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक मैंने आपको एडिटोरियल कमेंट दैनिक भास्कर का प्रोवाइड किया था जो राजनीतिक चेतना से संबंधित थी, कि जो हमारी राजनीतिक चेतना है वो किस तरीके से सामाजिक चेतना में तब्दील होनी चाहिए, और खासकर अभी जो आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी हैं जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, उसको आधार बनाकर था। तो डेफिनेटली ये देश के लिए गर्व की बात है कि एक आदिवासी महिला अब हमारे देश की फर्स्ट लेडी या कह लीजिए फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री बनने जा रही है। तो ये राजनीतिक चेतना है, राजनीतिक चेतना में ये बदलाव आया है कि हम ऊंचे पदों पर भी अब उन्हें देख रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या इसका प्रभाव हमारी सामाजिक चेतना पर पड़ रहा है, उसको लेकर के एक छोटा सा ही सही लेकिन एक बहुत अच्छा लेख था, थोड़ा सा एनालिटिकल भी था, और मुझे लगता है कि मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से वह एक अच्छा एडिटोरियल कमेंट है, उसे भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषयों के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 7 से 21 अक्टूबर के बीच में होने वाली हैं। इसके लिए दो स्टूडेंट ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनमें एक हैं डॉक्टर संचेत सिंह देशमुख बालाघाट मध्य प्रदेश से, और दूसरे हैं राहुल बमनिया जो गांव समोई जिला झाबुआ मध्य प्रदेश से हैं। तो डॉक्टर संचेत और राहुल बमनिया, आप दोनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं अमृत नारायण सतपति ओडिशा से, जिज्ञासा मीना, सुखराम बाड़मेर राजस्थान से, प्रतीक पूरे, आकांक्षा मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, पीहू कश्यप और भोगेंद्र कुमार सिंह दरभंगा बिहार से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। दो दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।